जैसे मछली पानी में अंदर में रहती है, कीचड़ में रहती है, किंतु न तो कीचड़ और पानी दोनों उस पर लगता है। कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी पानी से उसका संपर्क नहीं रहता, पानी के बिना जी नहीं सकता, पानी में भी रहेगा किंतु उसमें पानी का बूंद देने से इधर उधर। उचित प्रकार से जो सच्चे साधक हैं, जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं, वो लोग भी इस संसारिक कर्म ज्ञान मिथ्या भक्ति में, औपाधिक भक्ति में, गुणीभूता भक्ति में नहीं रहे, शुद्ध भक्ति में वे प्रवेश करने की चेष्टा करें। कैसे? उनके लिए आठ याम है। जैसे हमारे भक्ति में, स्मरण पद्धति में आठ याम है, वैसे भजन में भी आठ याम है। जैसे निशांत लीला, प्रातःकालीन लीला, कुर्बान में लीला, मध्यान्ह में लीला, अपराह्न में लीला, सायंकालीन लीला, प्रदोष लीला और मध्यरात्रि की लीला, ये कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं। साधक इनका समय समय पर प्रतिदिन जिस समय कृष्ण की जो लीला होती है, जैसे अभी 12 बजा है, कृष्ण कहाँ होंगे? गोवर्धन में कुसुम सरोवर के निकट कहीं होंगे। क्या कर रहे हैं? गोचारण लीला। और सब सखाओं को छोड़ दिया, सुबल अथवा मधमंगल को साथ लेकर के राधा कुंड और सूर्य की तरफ में जा रहे हैं। जब सवेरा हुआ तो सवेरे क्या कर रहे हैं? ये सब जो कृष्ण भावनामृत में, गोविंद लीलामृत में, श्रीमद् भागवत में, हमारे गोसाई ग्रंथ में जो दिया गया है, उच्च कोटि के महाभागवत साधक लोग जिनको भाव हुआ है और प्रेम चाहते हैं, ऐसे लोग इसका स्मरण करते हैं। सब लोगों के लिए ये संभव बात नहीं है। संसारिक बातें हमारे दिमाग में आएगी और नहीं कर, किंतु फिर भी हमारा प्रयोजन यही है, उधर ही हमको जाना है, उद्देश्य रखना है, तो इसके लिए साधनों के लिए, ये तो हुआ उत्तम भागवतों के लिए। और निम्न में जो साधक है, कृति साध्या भवित साध्य भावा स्वसाधन विदा नित्य सिद्धस्य भावस्यम प्राकट्यम हृदि साध्य। इसमें जो इंद्रियों से साधन कर रहे हैं, अभी मन और आत्मा के द्वारा साधन करना इनके लिए संभव नहीं है। अभी कर्म मार्ग से निकल करके आ रहे हैं ज्ञान मार्ग से। इन लोगों के लिए निशांत एक है, भजन का निशांत। वो क्या है? जैसे निशा का अंत का भाग, घोर अंधकार अब नहीं है, सूर्य उगने को है, किंतु एक घंटा विलंब है। एक घंटा कितना मिनट?
24 मिनट।
उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय सारे आकाश में झिलमिलाने से अब बंद हो जाते हैं, चंद्र भी कम दिखता है, तारे भी नहीं दिखते, प्रकाश थोड़ा थोड़ा आ जाता है, थोड़ा थोड़ा अंधकार भी है। इसलिए उस भजन का वो समय क्या है? श्रद्धा। क्यों श्रद्धा है? उस समय अनर्थ है, पूरे शरीर में अहंकार भाव है और सारे जितने भी अनर्थ हैं, कौन अनर्थ? हृदय पहला स्वरूप्रम
कृष्ण,
स्वरूप्रम में कृष्ण का स्वरूप्रम, आत्मा का स्वरूप्रम, भक्ति का स्वरूप्रम, माया का स्वरूप्रम, असत तृष्णा, भक्ति के अतिरिक्त तरह तरह की असत तृष्णाएं होंगी, जब तृष्णा होगा तो हृदय दुर्बल हो जाएगा, तो हृदय दुर्बल से अपराध भी कर बैठे, जैसे कि हम लोगों का इस समय में वर्तमान है, उसमें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए श्रद्धा तो ही है भक्त साधुओं के संग में, घर भी छोड़ दिया, लाल कपड़े भी ले लिए, गले में माला भी है, किंतु अभी अंधकार रहा है भाई, भक्ति आने वाली है किंतु अभी अंधकार है, अभी श्रद्धा तक के बजे अनर्थ पूरे भरे पड़े हैं, संसारिक आसक्तियां हैं, तरह तरह की कामनाएं हैं, उसको कहते हैं अभी श्रद्धा, वो भजन के लिए निशान चली जाए। इस समय के लिए हमें उचित है अपराध क्या है समझो, अनर्थ क्या क्या है भजन में पार कर, हम कैसे इनको पार कर सकते हैं, इसलिए उस समय का नाम शुद्ध नाम नहीं है। नाम शुद्ध कब होगा, जब भावावस्था आएगी तब हो सकता है, इसके पहले नहीं। इसलिए उस समय बहुत तरह के अनर्थ है, यहां तक कि यह भी अनर्थ है भजन करते करते चारों तरफ में प्रसिद्धि आएगी, रुपए पैसे आने लगेंगे, लोग सम्मान खूब करने लगेंगे, जो कुछ चाहोगे वो मिल जाएगा, कहो हम तो भजन में सिद्ध हो गए, और उस समय अपनी चरण भूमि देना, अपना प्रसाद देना और आचार्य बन बैठना, ये सब उसको विरापतित कर देता है। इसलिए ये सब चीजों को समझना चाहिए, यू कैन स्पीक समथिंग। श्रद्धा को हमने बतलाया निशान, श्रद्धा किसको कहते हैं, शास्त्रों में भगवान के वचनों में, वैष्णव और गुरु के वचने में दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा मैंने क्या, प्राण जाने पर भी मैं इनके वचनों के विरुद्ध नहीं करूंगा, जो कुछ कहते हैं हमको पूरा विश्वास है मैं करूंगा। विश्वास का शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सब कर, कृष्ण का भजन करने से संसार में हमारा जो कुछ करनी है वो सब कुछ करना हो गया, इस दृढ़ विश्वास का नाम शास्त्र यही कहते हैं, गुरु भी यही कहते हैं, वैष्णव। यदि आपने सब कुछ जगत का कर लिया और कृष्ण का भजन नहीं किया तो जीवन बेकार का, और यदि आपने कुछ भी नहीं किया किंतु भगवान का भजन कर लिया तो सब कुछ कर लिया, ऐसे विश्वास जिसको हो जाएगा वो भक्ति में प्रवेश करेगा, इसका नाम है श्रद्धा। साधु संत और शास्त्र क्या बतलाते हैं, सबसे पहले देखो तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, कोटि कोटि जन्म से कोटि बार तुम मनुष्य हुआ, कोटि बार देवता इत्यादि हुआ, फिर उसी चक्कर में गए, इस जन्म को पा करके तुम भगवान का नाम करो, विशेष करके कलयुग में नाम में भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं नाम में है, नाम वह कर सकता है जो भगवान करते हैं, बस उससे भी अधिक करेगा। पापियों की शक्ति नहीं है जितना पाप कर सके, इतना नाम में शक्ति है ये पाप को दूर कर दे, तात्पर्य पापियों में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है जितना भगवान में पाप को दूर करने की शक्ति है, उसकी सारी शक्ति को समाप्त कर देंगे, पाप करने की शक्ति को भी वो हटा देंगे, जैसे आदमी निर्मल हो जाता है। अजामिल, वाल्मीकि, जगाई मधाई इत्यादि ऐसे पापी थे जिसकी कोई इयत्ता नहीं, किंतु भगवान का नाम करने के साथ ही साथ में ऐसी शक्ति आई सारे पापों को छोड़ दिया सदा के लिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो यदि भगवान का नाम उच्चारण करता है तो भगवान की सारी शक्तियां उस पर आकर और उसे परम पवित्र बना, ये विश्वास रखें। कोटि कोटि यज्ञ, कोटि कोटि अस्पताल स्कूल बनाना, शिक्षागार बनाना, उसके अपेक्षा एक आदमी की चित्त वृत्ति को भगवान के तरफ में लाना, यह सबसे बड़ी भारी चीज है। इसलिए कहते हैं जिसने जन्म जन्मांतरों में अनेक जन्मों तक भगवान वासुदेव की अर्चना की है, उन लोगों को भगवान के नाम में रुचि होती है। उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है कि फिर अर्चन करें या न करें। क्या कहा? जिन लोगों ने हजारों जन्मों तक भगवान का अर्चन किया कनिष्ठ अधिकार वाला, और इस जन्म में देखा जो भगवान का अर्चन नहीं कर रहा केवल नाम कर रहा है, नाम में पूर्ण निष्ठा है, नाम को भगवान से भी अधिक समझता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि फिर से अर्चन करें। अर्चन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ये इच्छा के ऊपर मन जाता है। ये बोल सर तो तुम्हारे ओखने तो इच्छा हो ना, ये तो अर्चन किया नहीं, अर्चन से बहुत ऊपर चला गया है, इसको श्रद्धा हो गई है, इसलिए कनिष्ठ श्रद्धा जिसको उत्पन्न हो गई वो भी कनिष्ठ अधिकारी से उन्नत है। कर्मी योगी इत्यादि सभी ऊपर है, वो जो भगवान का नाम लेता है, यदि दीक्षा भी नहीं लेता है और है नाम क्या तभी ऊपर है, और यदि श्रद्धा हो गई तो शास्त्र कहते हैं भाई ये गुरुकरण करना पड़ेगा, उसके बिना भी तुम्हारा नाम वो शुद्ध नहीं है। इसलिए गुरु की बात मान करके अब दूसरे में आया साधु संघ में अनर्थ निवृत्ति, ये प्रातःकालीन भजन। गुरु से हरिनाम दीक्षा लेकर शुद्ध रूप में अनर्थों को दूर करते हुए जो भजन किया जाता है ये दूसरा हुआ क्या प्रातःकालीन। धीरे धीरे जब अनर्थ दूर हो जाएगा और हरिनाम करने लगेगा, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करने लग जाएगा, तो ये तृतीय हो जाएगा क्या निष्ठा। निष्ठा के साथ में संबंध ज्ञान के सहित में नाम करता है तो ये तृतीय, इसे ऊपर चौथा। जब अनर्थ काफी दूर तक दूर हो गया और निष्ठा बदल करके हो गई रुचि, अब उसको कहना नहीं पड़ता कि आज तुमने हरिनाम किया कि नहीं, कहने की जरूरत नहीं, आज तुमने शास्त्र देखा कि नहीं, आज तुमने अर्चन किया कि नहीं, कोई अब कहने की जरूरत नहीं है। उसको नाम में रुचि हो गई, सेवा में रुचि हो गई, और उसका एक लक्षण है हरि कथा में नींद नहीं आती। यदि सब कुछ होते हुए भी हरि कथा में नींद आती है तो समझो जिससे उसको श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं, वो भी निशांत भजन भी उसका नहीं। इसलिए जो जो लोग सो रहे हों तो समझे कि भक्ति में अभी प्रवेश द्वार में अभी श्रद्धा में भी नहीं पहुंचे, तो उनको भक्ति की रुचि और इसको क्या कहें। इससे भी बढ़कर के जब उसकी रुचि निष्ठा से बढ़कर के रुचि और रुचि से आसक्ति हो गई, उसको कोई थोड़ा सा नाम करने में गड़बड़ करेगा, बाधा देगा, भगवान का चिंतन करने में बाधा देगा, शास्त्र अध्ययन से मना करेगा, तो उसको चीड़ हो जाएगी, उसका चित्त खराब हो जाएगा। कोई अपमान करने से उसका चित्त खराब नहीं होगा, कोई उसका विषय ले लेगा तो मन नहीं खराब होगा। कैसे मन खराब होगा? तो यदि कोई भगवान के भजन में उसको बाधा देता है, हरिनाम करने में गड़बड़ करता है, चिंतन करने में, शास्त्र अनुशीलन में कोई बाधा देता है, तो उसमें क्या करेगा? उसको दुस्संग जान करके छोड़ेगा, उसे सहन नहीं होगा, उसे ऊपर आसक्ति, आसक्ति से ऊपर में तब वो शुद्ध भाव हो जाए, उस समय में शुद्ध भजन हो सकेगा वो भावावस्था, और इसके बाद में तब फिर प्रेम। इस तरह से ये इसकी सात सीढ़ियां है, आठ। ये आठों ज्ञान में हम विशेष रूप से एक एक को लेकर के आगे से इसका हम बतलाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से सुन करके इसको पालन करने की चेष्टा करेंगे। बोलिए।
इवनिंग लेक्चर कंटिन्यूड।
ध्यान सलाह दिया जब तस्मै श्री गुरवे वंशा कल्पतरु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्य गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय भक्त्या विहीनापराजलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते शरणा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भूरि तं सर्वभूतविदाय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति देव्याय राधे तं न शरणामि.
कल सवेरे शाम को हमने प्रियत भगवतामृत से या श्रीमद भागवत से गोप्य तपस किम आचरण जमदनुष्म रूप लावण्य सार अस्मोधनन्य सिद्धम इसे श्लोक की यही ना कल कल बोले थे हमने कौन सा बोला था यही तो गोप्या किमाचरण जबदमुष्म रूप गोप्या तपस किमाचरण कुशलस्मवेन दामोदराधर सुधाम इस श्लोक की व्याख्या थी. जिस बात को गोपियां कह रही हैं वो ब्रह्मा और शंकर के लिए भी समझना बड़ा भारी कठिन है. उसको तो वही समझ सकता है जिन पर गोपियों की विशेष कृपा है. The words of gopis we cannot understand. Even ब्रह्मा शंकर and anyone cannot understand their words. What is the meaning? So deep meaning. उसमें हमने श्री सनातन गोस्वामी अभी सुना कि भक्ति ठाकुर जी के टीकाओं का अनुसरण कर कुछ मैंने कहा. आई टोल्ड समथिंग फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ श्री सनातन गोस्वामी वैष्णव तो सिंह श्री विश्वनाथ भक्ति ठाकुर दिग्दर्शनी टीका. अब हम बृहद भगवतामृत से आज हम लोग जहाँ तक पाठ किया था उसके बाद में यदपाद पंसु बहुजन्म कृच्छतो धृतात्मवीर योगी भीर अप्यलभ्य स्वयं यदृग विषय स्वयं स्थितम किम वर्ण्यते दिष्टम महो ब्रजौ कुशाम. आज श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का हम व्याख्या करेंगे जैसा सनातन गोस्वामी की व्याख्या करते हैं. परीक्षित महाराज जी ने अपनी मैया को समझाने के लिए ब्रज के प्रति थोड़ा सा लोभ उत्पन्न कराने के लिए ब्रज भाव के प्रति विशेषकर के गोपियों के कैसे भाव हैं इसके प्रति उनके हृदय में थोड़ा सा लोभ उत्पन्न हो जाए इसलिए वे समस्त शास्त्रों से अच्छे अच्छे रस के समुद्र ऐसे श्लोकों को उद्धरण देते हुए बतला रहे हैं. श्री सनातन गोस्वामी जी उनका संग्रह कर
बृहद भगवतामृत में उसको परिवेशन कर रहे हैं हम लोगों के। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि गोपियों के इन भावों को हम लोग स्पर्श कर रहे हैं। ये उन लोगों की कृपा है। जदपाद पांसु बहु जन्म कृच्छतो, यह श्लोक है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के द्वादश अध्याय के द्वादश श्लोक है। कृष्ण गोचारण करने के लिए वृंदावन में जा रहे हैं। इसका संबंध भी बराहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती जमालम रंध्राण वैन रधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम सबदवरणम प्राविशत गीत। उस समय भी ये शरत काल में कृष्ण अपने सिर पर मयूर मुकुट, हाथों में लपटी, पीताम्बर वस्त्र, गले में वैजयंती माला इत्यादि को धारण कर कृष्ण बलदेव और सखाओं के साथ में लख लख गायों के साथ में जा रहे हैं। उसी का ये श्री सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। जदपाद साधारण इसका अर्थ यह है कि जदपाद पांसु, पांसु मीन्स धूली, धूनी कण, जिनके चरणों की धूली को चरण की तो बात दूर रहे, उनके समस्त अंगों और मुखारबिंद का तो दर्शन बहुत दूर की बात रहे। योगी, ध्यानी, तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग लाखों लाखों जन्मों के कठोर तपस्या व्रत, कैसा कठोर व्रत, जैसे ध्रुव जी ने किया, अन्न जल भी छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दी, निर्जल एकदम बिना पानी और हवा के भी चित्त को रोक करके नारायण का दर्शन किया, किंतु उनके जैसा 10 गुण 20 गुण 100 गुण यदि कठोर भी तपस्या करे तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम की चरण की धूली को ये नहीं स्पर्श कर। इसलिए जन्म कृष्ण तो बहुत कठोर तपस्या के द्वारा जिनके चरण के धूली क्यों भी नहीं पाया जा सकता। धृतात्म भी योगी भी अपि अलभ्य, जिन्होंने आत्मा को भी विजय कर लिया है, धृतात्म पवित्र भी कर लिया है, कोई कामना वासना नहीं है, तो भी उन लोगों के लिए जिनके चरण की कमलों की धूली भी अलभ्य नहीं पा सकते। स्वयं वही कौन, वही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर स्वयं भगवान, समस्त कारणों के कारण ये भगवान स्वयं जग दृग विषय स्वयं स्थित, डोंट डिस्टर्ब, स्वयं स्वयं मीन्स स्वयं का माने क्या, ये लोग तो तपस्या कर रहे हैं और ये बिना बुलाए बिना बुलाए बिना प्रयत्न किए अनायास अपने गरज से ये कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन अपने गरज से बिना बुलाए हुए स्वयं से था, उनकी आंखों के सामने स्वयं गए। चरण की धूली की बात मत करो, चरण कमल की बात मत करो, स्वयं कौन से कृष्ण, परहा पीड़म नटवर बपु कर्ण ये अथवा श्यामम परिहण्य परिधिम वो अथवा नौमिद्य थे अप्र बपु से, ऐसे कृष्ण बिना बुलाए बिना निमंत्रण के बिना किसी कारण से स्वयं
यहाँ पर उपस्थित हो गए, उनके आंखों के विषय हुए। यही नहीं, स्वयं स्थित ब्रज में स्थित रहे, उनके सामने ही खेलना कूदना पीना कूदना सब कुछ एक साथ में कर रहे हैं। उनके आंखों से ओझल नहीं होना चाहते, वो यदि ओझल करना भी चाहे तो ये नहीं होंगे। ये स्वयं का तात्पर्य, स्वयं किम वर्ण्यते दृष्टम हो, ओ बड़े उल्लास से कह रहे हैं दृष्टम हो। अरे ये ब्रजवासियों का सौभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं, कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं इनके सौभाग्य। अब ब्रजोक्षाम, ब्रजोक्षाम माने क्या? ब्रजवासी लोग, ब्रजवासी लोग में किनके के लिए? वहां के सभी जो तीर्ण गुल्म पशु पक्षी ये भी भिन्न है, उनके नौकर चाकर भी ब्रजवासी जो हैं, जो लोग की ग्राम के बाहर रहते हैं, बढ़ई तांबोली और जो जाति से बहिष्ठ हैं बाहर में रहने वाले वो लोग, ब्राह्मण लोग भी जो गोप जाति के नहीं हैं, उनकी गईये बछड़े सभी लोग, वहां के पेड़ पौधे ये सभी ब्रजोक्षाम हैं, पेड़ पौधे भी, और उससे भी बढ़ करके जो सखा लोग हैं मैया जसोदा इत्यादि हैं, इनके भाग्य की महिमा हम क्या कहें? इनसे भी अधिक उन गोपियों की भाग्य की महिमा वो भी ब्रजोक्षाम में लाओ, जिस पर जिनके चरणों पर स्वयं ये ब्रजनंदन अपना मस्तक झुका देते हैं और कहते हैं कि ना पारे हम निर्वज्ज संगीत, उनके सौभाग्य की महिमा में क्या वर्णन करूं। मैंने सारे ब्रजवासियों का क्रम से क्रमशः लिया, यू कैन स्पीक समथिंग। अब हम लोग सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले यह समझ लो ये सनातन गोस्वामी हैं कौन। महाप्रभु जी के कृपा पात्र, बहुत बड़े भारी कृपा पात्र हैं, उनके परिकर हैं, और कृष्ण लीला की ये लवंग मंजरी हैं। कृष्ण की सखियों में श्रेष्ठ सखी हैं, सब समय इनको राधा जी की सेवा का सौभाग्य है जिनको। एकांत स्थिति में भी यहां पर ललिता विशाखा भी नहीं आ सकती, उस स्थान में भी राधा कृष्ण जुगल की ये सेवा कर सकती हैं, उनके मनों की भावना जानती हैं, 64 कलाओं में पारंगत हैं, जिस चीज की जरूरत होती है निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध गई जाजाली भी युक्ति अपेक्षणीय तत्राति दाक्षा गतिबल्लभ। श्री सो मच दक्ष, वो बहुत ही दक्ष हैं, कलाओं में निपुण हैं, जो जो जरूरत होती है राधा कृष्ण के जुगल के मिलन में कराने में। तो ऐसे ये सनातन गोस्वामी जी हैं, तो इसलिए जो कहा गया बिना गोपियों की कृपा के उनके अर्थ नहीं समझे जाएंगे, तो ये हम समझते हैं कि ये सनातन गोस्वामी लौंग मंजरी रोकी गोपी हैं, इनकी कृपा के बिना ये नहीं समझा जाए। तो उन्होंने ठीक ही कहा है सनातन गोस्वामी जी ने या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, बिना गोपियों के गुढ़ अर्थों को नहीं समझा जाएगा। तो ये लौंग मंजरी जी महाप्रभु के परिकर भी और कृष्ण के श्रीमती राधिका जी के परिकर, इसलिए कितनी श्रेष्ठ होंगे, कितने गंभीरतम भावों को जानती होंगी। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि उनका यह अर्थ हम लोग पाठ कर रहे हैं और समझने की चेष्टा कर रहे हैं। कहते हैं, पहले ही कहते हैं दृष्टम महो, अहो अहो कहा जाता है कब? आनंद में भरपूर हो जाता है, अथवा कोई दुख इतना बड़ा भारी आ जाता है तब आदमी का, यहाँ बड़े बड़े आनंद के साथ में करें, आज कितने बड़े सौभाग्य की बात है। क्या ऐसे ही उसी ब्रज बालकों के सहित स्वयं भगवान जी इनको कहते हैं, समस्त अवतारों के अवतारी आज कृष्ण वृंदावन में विहार करने जा रहे हैं। तो जिनके साथ में विहार करने जा रहे हैं वो ब्रज बालकों की सौभाग्य की महिमा का क्या नहीं वर्णन कर, हमारे लिए ये संभव बात नहीं है। ये तो बात बहुत दूर रहे, उनके दर्शन का सौभाग्य ही बड़ा भारी कठिन है। किनका? कृष्ण और उनके सखाओं का। अर्थात कैसे ये उसको वर्णन कौन करेगा? यदि उनके साथ में कोई रहा हो और अनुभव किया हो वो समझे, या तो उन्हीं सखाओं में से सिबल, सिदाम, वसुदाम, तो कृष्ण, उससे भी ऊपर अर्जुन, उज्जवल, सुबल, मधुमंगल होंगे तो वो कुछ बतला सकते हैं, और इनसे भी अधिक वो बतलाएंगे कि गोचारण जाते हैं क्यों सखाओं को लेकर के, किस उद्देश्य से जाते हैं। उनके इस बहुत दूर की भावनाओं को समझने वाली कोई गोपी हो तो और भी गुण रहस्य को बतला सकते, उनमें से ये सनातन गोस्वामी है जो इसको वर्णन कर रहे हैं। इसलिए बड़े सावधानी के साथ में सुने और हृदय में इसको धारण करके वैसा ही भजन करने की चेष्टा करें। You can speak something. सनातन गोस्वामी जी अब एक एक शब्दों का अर्थ लेकर उसका गूढ़ तात्पर्य बतलाते हुए बोल रहे हैं। यत पाद पांसो, जिनके चरण कमलों की धूलि, पांसु माने होता है धूल, रजह कर्ण, कैसी? श्री कृष्ण जब चलते हैं उनके चरणों में धूल लग जाती है, उसकी एक धूली भी उसको भी पाना लेना बहुत सौभाग्य की बात है। अथवा चरण धूली कणिका, चरण की पूरी धूली नहीं, धूली को लाखों भागों में विभक्त किया जा सकता है, इसलिए धूली नहीं बल्कि धूली की कणिका, एक कण भी उसका एक सौ भाग का भी एक छोटा सा भाग, उसको भी स्पर्श करना, उसका दर्शन करना कम सौभाग्य की बात नहीं। अथवा जब कृष्णचंद्र जी चलते हैं वृंदावन में तो उनके चरण जहां पड़ते हैं उनके चरणों का छाप लग जाता है और कृष्ण आगे चले जाते हैं। अब उस छाप से जिन धूलियों का संपर्क हुआ है उन धूलियों में से एक कण आ रहा है, समझ में? चरण के धूली जो चरणों में संलग्न है उसके लिए नहीं, उसको तो बहुत सौभाग्य की बात है। कृष्ण जब चलते हैं उनके चरणों की छाप पृथ्वी पर लगती है, उसमें शंख चक्र, कमल, त्रिकोण, त्रिभुज, घट, पताका, ध्वजा इत्यादि 19 चिन्ह जब पृथ्वी में पड़ते हैं जिसको अपूर्व जी देकर आनंद में विभोर हो जाते हैं और उसके चरणों में लौटने लगते हैं जिस धूली में, उस धूली की एक कण भी यदि किसी को स्पर्श करने का सौभाग्य हो, ये बड़े बड़े महात्मा, योगी, ज्ञानी, ऋषि, कोटि जन्म तक कठोर तपस्या करने वालों के लिए भी ये संभव पड़ते हैं। अथवा कृष्ण जा रहे हैं और कहीं से कोई धूली उड़ करके आई, हवा चल रही और आंधी में या ऐसे हवा में उड़ करके आई धूली और छिटक करके कृष्ण के चरणों से थोड़ी सी लग गई, स्पर्श हो गया, फिर उड़ करके कहीं चली गई, उस धूली को भी जो स्थिर है उसको भी बात छोड़ो, वो तो परम सौभाग्य, उससे भी छिटक कर आई, उनके चरणों में छू गई, छू करके कहीं गिर गई, उस धूली को भी पाना इन लोगों के लिए संभव नहीं है। इस धूली का मैं क्या वर्णन करूं, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए ऐसी धूली में से एक कण अथवा कह रहे हैं नंद भवन में जहां कृष्ण क्रीड़ा करते हैं ऐसे लगाकर धूल में धूसरित हो जाते हैं और मैया उसको झाड़ती है अपने अंचल से। उस धूल में से एक कण यदि मिल जाए तो ये उन लोगों के लिए संभव है, ये बड़े बड़े भक्तों के लिए भी संभव नहीं है, तो उन लोगों की बात क्या। बड़े उल्लास से कहते हैं इनकी भी बात छोड़ो, यदि कृष्ण सेवा कुंज में या गोवर्धन के किसी कुंज में, माधवी कुंज में अथवा स्वानंद सुखद कुंज में, उससे भी अनंग मंजरी आनंद या ललिता कुंज में प्रवेश करते हैं राधा कुंज, और उस समय उनकी जो चरणों की धूली है जिसकी सेवा गोपियां करती हैं, और उस समय श्रीमती राधिका जी के चरण की धूली उसे संलग्न हो मिल जाए, तो ऐसी धूली को बड़ा भारी कठिन है। इनकी बात क्या, बड़े बड़े भक्त लोग भी उनका भी स्पर्श नहीं कर पाते एक कण भी। इसलिए क्रमशः सनातन गोस्वामी जी के हृदय में ये सब भावना आ रही है, वैसी धूली उनकी तो बात छोड़ो, जिन वृक्षों के जिन कुंजों में कृष्ण क्रीड़ा करते हैं, कृष्ण वृक्षों पर चढ़ जाते हैं बच्चों के साथ में क्रीड़ा करते ही, और उनकी सघन कुंजों में या वृक्षावलों में सूर्य की किरणें आती हैं, वो क्या कहते हैं गवाक्ष कहते हैं घरों के लिए, और उसके लिए उनके झाड़ियों में से सूर्य की किरणें आती हैं, और उसमें कोटि कोटि रेणु झलमल झलमल करते हैं, उसमें एक कण भी यदि कहा जैसे कदम्ब कानन में, कहा कदम्ब कानन पुछरी में, कदम्ब कानन है सुनहरी कदम्ब कानन, नंदगांव में जहां पर गोपियां रहती हैं, ये सब कदम्ब कानन के कुंजों में जहां पर उनके सघन वृक्षावलियों में से छाया में से सूर्य की किरणें आती हैं, उसमें जो चमकते हैं झिलमिल करते हैं, उसमें से भी कृष्ण के चरणों से स्पर्श या संपर्क, उसको भी कृष्ण से दुर्गत संबंध उन धूलियों का, तो भी यदि उस धूली को कोई स्पर्श करे, ऐसा सौभाग्य तो इन लोगों में नहीं देखता। ज्ञानी योगी तपस्वी इन लोगों के लिए संभव है। ब्रह्मा जी भी चाहते हैं किंतु संभव नहीं, किसके लिए संभव होगा, मैं तो समझता कि उन्हीं लोगों के लिए संभव होगा जो गोपियों के अनुगत में भजन कर रहे हैं या उनको सिद्धि हुई होगी, ऐसे लोगों के लिए ही ये सब धूली क्या संभव है। अतः दूरवर्ती सूर्य की किरणों में झलकने वाली वृंदावन की रज कृष्ण के चरणों से संपर्क कदम पकाने इत्यादि में जो है कृष्ण के चरणों के साथ में जब किंचित थोड़ा सा भी कोई संबंध हो, ब्रज की ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर कृष्ण के चरण नहीं पड़े हो, है कि इसलिए दुर्गत किसी भी प्रकार से कृष्ण के चरणों का संबंध है, ब्रज का संबंध है, तो बड़े बड़े ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले ठीक हम पितामह जैसे ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले, ब्रह्मचर्य के लिए छोड़ाने के लिए परशुराम से युद्ध भी हुआ। परशुराम ने कहा कि उससे शादी कर लो, शादी या युद्ध दोनों में से एक चाहे वर्ण करो। उन्होंने कहा कि शादी नहीं करूंगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा, और उनको परास्त कर दिया। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों में हनुमान जी अग्रगण्य है, इनसे बढ़कर के कोई ब्रह्मचारी होगा? ब्रज के कुंजों में जाएंगे उनके लिए भी सौभाग्य। तो वो गोपेश्वर बन करके आते हैं वृंदावन में, उनकी चरण धूलि से स्नान करो। इसलिए इस धूलि के महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? सनत सनंदन सनातन को भी डायरेक्ट रूप में ब्रज में जाते हुए नहीं देखा जाता, जानते हैं गुरु हैं, क्योंकि श्रीमद भागवत के वक्ता ही हैं, अष्टकालीन लीलाओं के वक्ता हैं, तो भी देखा नहीं जाता। इनसे बढ़कर के जितेंद्रिय ब्रह्मचारी कौन होगा? ऐसे लोग जो सब समय समाधि में रहते हैं और बहुत क्लेश पूर्वक तपस्या करते हैं, किंतु ऐसी धूलि को जिसका मैंने वर्णन किया, अंततः 10 प्रकार की धूलि का वर्णन किया कृष्ण से संपर्क, किंतु ऐसे धूलि में से एक धूलि को भी स्पर्श ये लोग कर नहीं सकते। एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, लाखों जन्म में। किंतु यदि किसी के अंदर में चैतन्य महापुरुष के प्रति उस संप्रदाय में आया हो, पुरुष की कृपा हो, किसी वैष्णव की कृपा हो, ऐसे वैष्णवों की, और हृदय में लालसा जगी, हाँ मैं गोपियों की चरण की धूली कब बन जाऊं, तो उसके लिए आशा की किरण उसके लिए है, और दूसरों के लिए कभी भी किरण की आशा नमस् करो। यू कैन डिफाइन ध्रुव प्रहलाद जैसे लोग, उसे भी बढ़कर के सनत सनंदन जैसे लोग, बड़े बड़े भक्त लोग जब कृष्ण के ऐसी दुर्लभ चरण रेणु को स्पर्श करने के अधिकारी नहीं है, किंतु वो जो कृष्ण जिनकी चरण धूलि है, ऐसे सच्चिदानंद मूर्ति मनमत जो गोपियों की परिषद में अपने रूप को प्रकाश करते हैं, थोड़े संकुचित हुए, लज्जित हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, गले में अपना अपनी चादर को लिपट कर, मानो कुछ हाथ जोड़कर बस हो गया, ऐसा कृष्ण का जो मनमत रूप है, अथवा ऐसा रूप यशोदा जी ने बांध रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से कलजल निश्चित गंगा जमुना की धारा बह रही है, जो समस्त अवतारों के अवतार हैं, नारायण जिनके वैभव अवतार हैं, राम इत्यादि कला हैं, ऐसे स्वयं भगवान कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर बिना बुलाए कोई तपस्या नहीं, और उनके सामने उपस्थित होकर के दर्शन देने की तो बात क्या है, उनके अंगों से अंग अपना रगड़ते हैं, उनको आलिंगन प्रदान करते हैं बिना मांगे, उनका जूठा खाते हैं, वो गोपालकों के ब्रजवासियों के नयनों के विषय पूछ होते हैं। अपने आप बिना बुलाए दर्शन देते हैं। केवल एक दो दिन नहीं, कम से कम तो 10-12 वर्ष 15 वर्ष तक ब्रज में रह करके उनको यह सौभाग्य दान किया। आंखों से उजल नहीं होते, ऐसे ब्रजवासियों की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। मैं क्या सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, वर्णन नहीं कर सकता। अथवा जिनके दर्शन की इतनी महिमा है, तो ये लोग अपनी क्षुद्र तपस्या के द्वारा जो भगवान का दर्शन चाहेंगे, ये तो बेकार की बात। ये किसी तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, संयम के द्वारा, तीर्थ में स्नान करने के द्वारा, दान के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं संभव है। जो ब्रजवासियों को मिला, इन ब्रजवासियों में से यशोदा जी ने, नंद बाबा ने, सिद्धांत सुबल ने, मधुमंगल ने, सुबल ने, या गोपियों ने कौन सी तपस्या की, वो तो पूछती हैं उन लोगों के लिए बंसी इत्यादि के लिए कौन सी तपस्या की। किंतु इन गोपियों ने, ब्रज के सखाओं ने, कृष्ण के दासों ने, रक्षक शिक्षक इत्यादि ने कौन सी तपस्या की थी, कौन सा व्रत किया था। तपस्या से नहीं होता ये कह रहे हैं सनातन। ऐसे जो ब्रजनंदन श्याम सुंदर, उनके साथ में जो उनका सब समय दर्शन कर रहे हैं, साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, जो कृष्ण